অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। গুরবে গৌরচন্দ্রায় রাধিকাবৈস্তদালয়ে কৃষ্ণায় কৃষ্ণভক্তায় তদ্ভক্তায় নমো নমঃ। পঞ্চাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্যৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। নমঃবদন্নায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায়তে কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরোত্তিষে নমঃ। জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ এছায় গোসাই করি চরণবন্দন যাহাইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পুরন মহাভাব স্বরূপতম কৃষ্ণপ্রিয়া বরিয়সী প্রভক্তি প্রয় দেবী রাধিকে তাঙ্গ নমাম্যহম। রাধি বৃন্দাবনাদিশে করুণামৃতবাহিনী কৃপয়া নিজ পদাব্জ দাস্যং মহ্যম প্রদীয়তাম। বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাম পাদরণুমভীক্ষ্ণশ যশাং হরি কথোদ্গীতম উনাতি ভুবনত্রয়ম। জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াল প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি শ্রী গৌরভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। বলো শ্রী গুরুজি মহারাজ কি জয়, গুরু পরম্পরা কি জয়, অনন্ত অনন্ত কোটি বৈষ্ণববৃন্দ কি জয়, জয় সপার্ষদ গৌর হরি কি জয়, গৌর নিত্যানন্দ প্রভু কি জয়, জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা সুদর্শনজীও কি জয়, ভক্তবিঘ্ন বিনাশন কারিণ সিংহদেব কি জয়, ভক্তরাজ প্রহ্লাদ মহারাজ কি জয়, সর্ববিশ্বতা গিরিরাজ গোবর্ধনজীও কি জয়, গোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহনজীও কি জয়, ব্রজমণ্ডল ধাম কি জয়, ব্রজবাসী ভক্তবৃন্দ কি জয়, ব্রজেশ্বরী মধেশ্বরী প্রাণেশ্বরী শ্রীমতী ধারণী কি জয়, ব্রজদেবীগণ কি জয়, সমবেত গৌরভক্তবৃন্দ কি জয়, গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। শ্রীশ্রীমৎ দামোদরষ্টকম সত্যব্রত মুনি সনাতন গোস্বামী এবং গুরুবর্গ, ইয়ে ঊর্জাব্রত ইয়া দামোদর ব্রত, ইসমে বদলা ভগবান ভগবান কো অপনানে কে লিয়ে শাস্ত্র মে বিভিন্ন তরিকা বতলায়া, কিন্তু ইয়ে সবসে বড় আসান তরিকা হ্যায় উপায় হ্যায় যদি ইস দামোদর ব্রত মে কিসি তর সে ভি ব্রজমন্ডল মে আকর কে অর ব্রজ কা আশ্রয় গ্রহণ করে, ইসমে ব্রজ মে বাস করে ভগবান কে পরিকর কে সাথ অবশ্যই ভগবান ভেট করা দেন, अन्यत्र वास करने से या व्रत धारण करने से उसका फल मिलेगा, किंतु जब तक प्रेमी भक्तों के आश्रय या उनके सानिध्य लाभ नहीं होगा तब तक भगवान के कृपा के जो स्वरूप है ये उपलब्धि नहीं हो सकता है। भगवान की कृपा का उपलब्धि तभी होगा जब धाम ये ब्रज धाम इसमें आने पर और उनकी कृपा से परिकरों के साथ संबंध ज्ञान जितना ही भगवान के भक्तों को अपना समझेंगे, ममता होगा, इतने ही भगवान के साथ बहुत जल्दी संबंध होगा। इसलिए भगवान ये दामोदर लीला में स्पष्टीकरण करते हुए कह रहे हैं कि ग्रंथकार कहते हैं हम उस दाम को भी प्रणाम करते हैं अर्थात रस्सी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि रस्सी में इतना तेज है, इतना शक्ति है जो परब्रह्म को भी उन्होंने बांध दिया। ये प्रपंच विश्व ब्रह्मांड के जो मालिक है, 14 भुवन के मालिक भगवान स्वयं और ऊपर भी जो कुछ है, उस प्रभु को बांधना कोई आसान काम नहीं है। किंतु जसोदा माता विश्व को वशीभूत कर लिया, अपनी सिद्ध भूमिका में रह कर के भी उन्होंने दिखाया साधन कैसे होता है। धैर्य के साथ उन्होंने प्रभु के बंधन के लिए चेष्टा की, प्रभु ने बंधन को स्वीकार किया। ये बात्सल्य विशेष है, ये बात्सल्य रस उसके यदि कोई तर्क करे कि यह ऐसा नहीं हो सकता है या भगवान को बांधा नहीं जा सकता है तो ये केवल मात्र मूर्खता है। कहते हैं भगवान के ये जो पास है रस्सी है उसको भी नमस्कार करते हैं, जो उनके उदर है उसका भी कैसे उत्कर्षता है। यशोदा माता जाती है, मैं उनको बांध लूँ और अपने पास रख दूँ, किंतु देखा ग्रंथकार कुछ और कर रहे हैं, नमस्ते स्तु दामने स्फुरदीप्ति दामने तदीय उदरायथ विश्वस्त दामने। कहते नमो राधिका वै तदीय प्रिया वै नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। कहते भगवान की अत्यंत प्रिय जो श्रीमती राधारानी स्वरूप शक्ति, जब तक उनके आश्रय नहीं लेते हैं तब तक बहुत साधन में भी कष्ट है। तो यशोदा माता चेष्टा तो किया बांधने के लिए, किंतु यह बंधन में भी कष्ट और फल में भी कष्ट है, दुखदायी है। और इसलिए ग्रंथकार कहते जब जब राधा रानी के लिए प्रणाम किया, उन्होंने मणिमोहन भगवान नारायण को भी स्मरण किया है, प्रभु मैं अपने बालक को बांध नहीं सकती हूँ, मेरे पेट से जन्म लिया और मैं उसको नहीं बांध सकती, किंतु मेरा लाज रखो अतः उसको बांधना है, अपने पास रखना है। तब उनको याद आया कि भगवान के अत्यंत निकटस्थ प्रिय जो गोपियाँ ब्रजदेवियाँ हैं उसमें राधारानी श्रेष्ठ है, इसलिए अब तक छिपा करके रखा, उनका नाम उच्चारण नहीं किया। जैसे राधारानी का नाम उच्चारण किया जो मुख्यतमा गोपियाँ में मुख्य है, बस वो अपने आप बंद गए, बसीभूत हो गए। क्यों? आराधनाओं में श्रेष्ठ आराधना राधे राधारानी ने किया है, वो भगवान के नित्य प्रिय है। इस प्रीति के कारण अपने प्रिय को वशीभूत करके रखा है और उनको बांध के रखा है। तो ये प्रीति ही एकमात्र बंधन के लिए श्रेष्ठ उपाय है। तो इसलिए ग्रंथकार बदलाया, नमो राधिका वही तदीय प्रिया वही। मैं सीधा कृष्ण को प्रणाम नहीं करता, जो राधा रानी के प्रिय है आपको मैं प्रणाम करता हूँ। जब राधा रानी के नाम ले लिया, उच्चारण किया, तो जगत बंदनीय, जगत बरिण्य, विश्व बरिण्य भगवान खुद उनके निकट आकर के बांध गए, बन गए। अब यहाँ सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ने स्वयं अपने संपत्तियों को अपने स्वरूप शक्ति श्रीमती राधारानी के पास दे दिया। जैसे भगवान नारायण लक्ष्मी का आदेश दिया, जो मेरे को मेरी उपासना करते हैं चाहते हैं तो तुम उनको, मैं लक्ष्मीपति हूँ तब उनको लक्ष्मी अर्थात धन दौलत सुख शांति के लिए तुम दान करो। और यदि कोई सीधा तुमको चाहती है चाहते हैं तो उनके पास मत जाया करो। तो भगवान नारायण की उपासना करने पर हरा भरा हो जाता है, अर्थात लक्ष्मी धन धान्य से उनको परिपूर्ण कर देते हैं। तैसे भगवान कृष्ण कहते हैं मेरी कितना भी उपासना करो, जब तक राधा रानी के चरणाश्रय नहीं किया, राधा रानी का उपासना नहीं किया और उनका आश्रय नहीं लिया, नाम गुणों का कीर्तन नहीं किया, तब तक मेरे को मेरे कृपा या मेरे को कभी वशीभूत नहीं कर सकती। इसके लिए बतलाया नमो अनंत लीलाय, भगवान की अनंत लीला है, अनंत शक्ति है। तो लील धातु बतलाया ये शोभायमान, नित्य लीला कहते हैं, नित्य जो हम भगवान की सेवा एक दिन के लिए कर लिया या इसके बाद में हम अन्यत्र गमनागमन करेंगे या और कुछ करेंगे, कहते हैं फिर नित्य नहीं होगा। अनंत लीला करने से यह गोकुल में जो नित्य लीला है उस लीला को प्रणाम करते हैं। किस लिए? कि एक दिन की लीला या एक मुहूर्त की वर्णन कर सकते हैं, किंतु समस्त लीलाओं को एक साथ में वर्णन करना संभव नहीं है। इसलिए ग्रंथकार ने प्रार्थना किया नमोनंत लीलाय, हे प्रभु आपके तो इतने लीलाएं हैं, अनंत लीलाएं हैं, तो हम किस कौन से लीला का यहाँ वर्णन करूं। इससे पहले हम लोगों ने सुना नलकुबेर और मणिग्रीव, इन दोनों को भगवान ने अधिकार दिया कि मेरे लीलाओं का कीर्तन करने का, यही तुम्हारा सेवा है, हम नित्यकाल के लिए तुमको स्वीकार किया। और स्वरूप सिद्ध नाम दे दिया, स्वरूप सिद्ध शरीर दे दिया, ये कभी बदलेगा नहीं, तुम्हारा नाम ये स्निग्ध कंठ और मधुकंठ रहेगा। अब गुरु के द्वारा मंत्र मिलने पर भगवान पूरा जिम्मेदारी ले लेते हैं। जब तक गुरु ने किसी को अपनाया नहीं तब तक वो स्वतंत्र है, आज़ाद है, इसका तात्पर्य है वो आवारा है, उसका कोई मालिक नहीं है, उसको देखभाल करना करने वाला कोई नहीं है। तो जब गुरु किसी को अपना लेते हैं तो उस समय भगवान स्वयं पूरा जिम्मेदारी ले लेते हैं। ऐसे तो प्रभु पहले भी पालन पोषण करते हैं और सबका देखभाल करते हैं, किंतु उसमें कर्म प्रधान, कर्म का फल, जीव कुछ भी करे अपने इच्छा से स्वतंत्र, तो उसको कर्म कहते हैं। और वो कर्म सत्कर्म हो सकता है, कुकर्म, अकर्म, विकर्म, विभिन्न प्रकार हैं, व्यभिचार आदि हो सकता है, अच्छे कर्म भी हो सकता है, किंतु सबका फल आएगा और भोगना पड़ेगा। किंतु भगवान के लिए, उनके विधिविधान के लिए यदि कुछ करते भक्तों के लिए, ये कर्म के अधीन नहीं है, उसका फल भोगना नहीं होगा। क्यों? भगवान खुद जिम्मेदारी लेते हैं और जो समय के समय अच्छे से अच्छा वस्तु जो कुछ चाहिए, जिसके द्वारा नित्यकाल प्रभु की सेवा कर सकते हैं और इस भगवत लीला का गुणगान कीर्तन श्रवण कर सकते हैं, इसके लिए भगवान स्वयं जिम्मेदारी लेते हैं और उनका श्रवण कीर्तन रूप विषय का पान कराते रहते हैं। किंतु कहते हैं शिव ठाकुर स्वयं भगवत लिखा कीर्तन और श्रवण करते हैं और कराते हैं। इसके लिए इस संसार का जो जहर है, जब समुद्र मंथन हुआ तो जहर निकला, तो सारा विश्व जलने लग गया, सभी लोग उस ताप से सब मूर्छित होने लग गया। तब सब लोगों ने प्रार्थना की, प्रभु आप कोई उपाय करो। तो शिव ठाकुर के लिए भगवान ने का आदेश दी, तब शिव ठाकुर ने जहर को लेके पान कर लिया। कहते हैं जो लीलारस पान करने वाले और पान करने वाले, उनके लिए जहर कुछ भी नहीं है। कहते हैं ये जहर भी परम अमृत स्वरूप हो गया। जब प्रहलाद महाराज जी हिरण्यकशिपु के पास विराजमान, तब हिरण्यकशिपु अपने पत्नी कयाधु को बोले, तूने बेटे का जन्म दिया और पेट में 60,000 साल रखा, ये मेरा विरोधी और जहर ली है, अब इसको यदि तू जहर पिलाएगी ये मरेगा, तभी मैं समझूंगा तू पतिव्रता है। आज यदि इसको तू रखती है पति के विरुद्ध व्यक्ति को, तो ये तू भी व्यभिचारिणी होगी। तो क्या चाहती है, पति को या अपने पुत्र को, व्यभिचारी बदमाश को? तब कयाधु बड़े दुखी हुए, अपने हाथ से माँ होकर कैसे जहर दूँ। किंतु प्रहलाद महाराज जी 60,000 साल नारद जी के निकट उस परम अमृत को पान किया, तो उनके लिए ये जहर जहर कुछ भी नहीं है। हाँ, तो जब कयाधु ने उनको समर्पण किया, तो कयाधु बड़े दुखी होकर के प्रहलाद को जहर दे रहे हैं, क्योंकि हिरण्यकशिपु को आदेश है। तो उस जहर को क्या किया उन्होंने, भक्तों का क्या नियम है, जो कुछ मिलता है बिना भगवत समर्पण किए हुए वो तो ग्रहण करते नहीं है। तो देखा भगवान को तो समर्पण करेंगे प्रहलाद, ये तो जहर है। तब भगवत शक्ति क्या किया, उसको चुपचाप हर लिया, चुपचाप वहाँ से गायब कर दी, अर्थात छिपा दिया, जिससे कि प्रहलाद को, प्रहलाद ये अपवित्र वस्तु भगवान को न दे। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, अपने चाय पियेंगे तो भगवान को देंगे, गांजा भांग चरस भांग छानेंगे तो भगवान को देंगे, किंतु ऐसे अपवित्र वस्तु प्रभु को देना नहीं चाहिए, तामसी वस्तुओं का निषेध है शास्त्रों में। कुछ कुछ लोग तो कहते हैं हमें जो कुछ कहते हैं वही शास्त्र है, ये मूर्ख लोगों के द्वारा बनाए गए इस नीतियों को शास्त्र नहीं माना जाता है और शास्त्र ग्रहण नहीं करते, स्वीकार नहीं, क्योंकि उसका फल बहुत बुरा है। इसलिए यहाँ कहते हैं भगवान ने स्वयं ये जो अनंत लीला भगवान की ये कीर्तन करने की वर्णन करने की अधिकार दे दिया। तो जब श्रीमती राधारानी की कृपा हो किसी के ऊपर में तो संसार वासना या संसार के जो जातना यंत्रणा कर्मों का जो बंधन है या विभिन्न प्रकार जो हमारे ऊपर में हैं जो आवरण है ये आवरण सदा के लिए हट जाता है, मुक्त हो जाता है। और जब तक कि भगवत लीला कर्ताओं का कीर्तन श्रवण नहीं किया, हाँ राधा रानी का आश्रय नहीं लिया, तब तक ये आवरण से मुक्त करने वाला कोई नहीं है और न कोई उपाय है। हैं कोई उपाय नहीं है कि हम ये स्थूल शरीर से और जो सूक्ष्म शरीर से मुक्त होकर के आत्मशरीर प्राप्त करें और भगवान के धाम में भगवान के सेवा में नित्यकाल के लिए अपने को स्थित कर दे, संभव नहीं है। क्यों? स्थूल शरीर जब तक रहेगा उसका आकर्षण बहुत भारी है और सूक्ष्म शरीर वो तो और भी चेतन प्राय आकर्षणीय है। तन भले ही सो जाए, मन महाराज सोता नहीं है, वो घूमता रहेगा, किधर जाएगा, क्या क्या करेगा, उससे मुक्ति मिलना कठिन है। मन एवं मनुष्य नाम बंधन कारण मुक्षेत, मन ही मनुष्य के लिए बंधन का और मुक्ति का कारण है। यदि यह मन दुष्ट मन, प्रभुपाद जी कहते हैं दुष्ट मन तुम्हें किसरो वैष्णव, प्रतिष्ठार तरे निर्जन घरे तुम्हार भजन केवल कोइत्यब। हाँ प्रभुपाद संग ये मन के ऊपर में बहुत भारी सुंदर एक कीर्तन लिखा, कहते दुष्ट मन तुम्हें कैसे, तुम कैसे वैष्णव हो, प्रतिष्ठा के लिए तुम निर्जन घर में घुस करके हैं माला मंत्र जप करते हो, ये तुम्हारे लिए कपटता है। हैं कनक कामिनी प्रतिष्ठा भागिनी छाड़ी आसी जा रही सही तो वैष्णव, तुम्हार कनक भोगेर जनक कनकेर दारे शिव माधव, कामिनी काम नहे तब धाम तहार मालिक केवल यादव। प्रभुपाद जी कहते हैं यदि जगत में जो कुछ वस्तु है यदि उसका मालिक यदि प्रभु को नहीं बनाया और समर्पण नहीं किया, खुद मालिकाना करने लगे तो कपटता है। जगत में आया नंगा, जाऊंगा नंगे, तो मालिकान कहाँ से बन गए? दो दिन के लिए चार दिन के चांदनी फिर अंधेरी रात। दो दिन के लिए दुनिया में आया, नाम है दुनिया, दो दिन की दुनिया चार दिन की दुनिया, तो दुनिया में कोई रहेगा तो है नहीं, जाना सबको है, तो क्यों नहीं पहले से चेतनता आ जाए कि इस हाँ दो दिन के दुनिया में हम घर बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, बगीचा बना रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, जहाँ जाना है वहाँ के लिए तो कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। इसे कहते हैं जब प्रभु के चरण में समर्पण करते हैं अपन को, तब प्रभु के शक्ति लीला शक्ति और लीला रस का पान कराते हैं, जिससे कि प्रभु के सेवा के लिए आत्मा अपने स्वरूप को प्राप्त करके चिरकाल के लिए अपना संबंध में जोड़ लेते हैं, संबंध में जुड़ जाते हैं। कहते हैं ये संबंध यदि प्राप्त नहीं कर पाया तो जड़लीला का श्रवण कीर्तन तो बड़ा अच्छा लगेगा। भगवान कभी कभी विभिन्न अवतार ग्रहण करके आते हैं, जैसे नृसिंह अवतार कर ग्रहण करके आया, कैसे भयानक और विवश लीलाएं हैं, ये सब भगवत लीला का उस समय अपने आप श्रवण कीर्तन करने की रुचि जागृत होगा यदि भगवत कृपा हुई तो किसी के ऊपर। कभी रामलीला इतना सुंदर लीला जो कि आज भी लोग नोटोंगी कहते हैं, जगह जगह पर इसको लोगों को सुनाते हैं, तो कहते हैं ये जो लीला शक्ति है इसके अंदर इतना सामर्थ्य है, वो लीला शक्ति जड़ जगत के बंधन को से मुक्त करके एकदम भगवान के चरणों में नित्यकाल के लिए सेवा अधिकार प्रदान कर सकते हैं। समस्त सद्गुण योग्यता ज्ञान विवेक हैं और उनके अंदर धैर्य सब कुछ प्रदान करेंगे। उनको मुक्ति की कोई ज़रूरत नहीं, उनको पापों से, तापों से, रोगों से, शोकों से, हारे बीमारी, इन चीज़ों से मुक्त होना और इसके बाद भजन करना, ये सब उनको द्वंद धर्म में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सब अनायासी, जैसे रुई के ढेर में आग लग गई तो कब राख हो गया किसी को पता नहीं चलता। ऐसे भगवान के लीला कथाओं का निरंतर यदि कोई कीर्तन करे, श्रवण करे, तो कहते हैं तस्मिन मन मुखरित मधुबी चरित्र पीयूष शेष स्वरित पवित श्रवंती ताजे पिबंत ब्रिटिश निपकाल कर नहीं आन अतिल भय शोक मोह अपहा। यदि भगवान की लीला कथा मंदाकिनी में कोई स्नान करता है, नित्य निरंतर पान करता है, उनका यही साधन है। क्योंकि बतलाया नौ प्रकार के भक्ति के अंग है। हाँ, कहते हैं भगवत व्यास की कीर्तन है, प्रहलाद स्मरण है, हाँ, और कपिपति दास्य अत सख्य अर्जुन है। हाँ, भगवान के साधन के लिए बहुन्न उपाय है, किंतु परीक्षित श्रवण ने, परीक्षित महाराज ने कुछ साधन नहीं किया, केवल भगवान की लीला कथाओं को हाँ श्रवण किया, ये पान करते रहे। बस लीला कथाओं का रसों का जब कोई पान करते हैं, उनके पाप ताप रोग शोक हारे बीमारी दुख भय कहाँ उड़ जाता है, कब खत्म हो गया कोई पता ही नहीं, और नित्य स्वरूप धारण करके सिद्ध शरीर में भगवान के सेवा में नित्यकाल के लिए हाँ अधिकार प्राप्त कर लेता है। इसलिए ये रासलीला अर्थात भगवान के जो रसमय लीलाएं हैं, इनका श्रवण कीर्तन करना एकमात्र जीवों के लिए अधिकार है और सामर्थ्य है, और समस्त हृदरोग समस्त कुछ मिट जाता है। कहते विकृत वज्रधु कबीर दिन च विष्णु श्रद्धान्वित अनुसन्याद अथ वर्णज्य भक्तिपरांग भगवती प्रतिलिभ्य कामम हृदरोगम आशु अपहीनत्व अचीर्ण धीर। शिव ठाकुर कथा कीर्तन कर रहे हैं तो सबको सुना रहे हैं, देखो जब तक हृदरोग रहेगा तो तब तक है उसका ताप से जर्जरित होना पड़ेगा, बड़ा कष्टकर है। और रोगों में इतना दर्द नहीं है, कि यदि हृदय में पीड़ा होता है ना तो कितना कष्टकर है, जिसको कांटा गड़ गया है तो जानता है कितना दर्द होता है कांटे से। तो कहते हैं ये हृदरोग जाएगा नहीं ऐसे, तो कैसे जाएगा, जब भगवान के लीला कथाओं का विशेषकर ब्रजलीलाओं का नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन करेंगे तो चिरकाल के हृदरोग दूर हो जाएगा। अपहीन तो अचीर न धीर, और वही नहीं भक्ति पराम भगवती प्रतिलिभ्य कामम पराभक्ति प्रेमा भक्ति प्राप्त करेगा। हाँ, और प्रेम से भगवान की सेवा करेगा। हाँ, अभी तो यदि कोई कहते हुए सेवा करने के लिए तो उसमें तो आलस्य और विभिन्न प्रकार जड़ता आकर के मूर्खता आकर के हमें दूर हटा देते हैं। जब भगवत लीला कथा को श्रवण करेंगे तो लीला कथा रस के साथ हैं भगवत शक्ति शरीर में मन में नहीं हृदय में जाके उपस्थित होगा। कहते सतांग प्रसंगान मम वीर्य संविदु, साधु के प्रसंग जहाँ पर साधु लोग हैं भगवान लीला कथा का श्रवण कीर्तन करते हैं कराते हैं, वो श्रवण कीर्तन के साथ साथ में अपने आप शक्ति संचारित हो जाता है। ये शक्ति नष्ट नहीं होता, कोई अभी तो साधन कर रहे हैं भजन कर रहे हैं, मानो छोड़ भी दे मर भी जाए कुछ व्यतिक्रम नहीं होगा, वो और दिन दोगुना चार चौगुना बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इसलिए लीलारस का पान करना और पान कराना ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। इस इंद्रियों को जब तक भगवत लीलाकथाओं का श्रवण नहीं कराया मन को, तब तक ये मन और इंद्रियां कभी शांत भी नहीं होंगे। और जहाँ भगवत लीलाकथाओं का श्रवण कीर्तन करा है ब्रजलीलाओं का, भगवान बाल गोपाल बनकर के आए उस समय हम लोगों ने सुना है भगवान के प्रति किसका प्रीति नहीं है, किसी एक समय बामन रूप धारण करके भगवान बलि के दरबार में गए। इतना सुंदर, हाँ छोटा सा बोने है किंतु इतना सुंदर रूप है, सब लोग आकर्षित हो गए। यहाँ तक बलि महाराज असुरों के राजा वो भी देख करके प्रभु के रूपों को बड़े मोहित हो गए। हाँ, और गुरु ने मना किया, देख ये बालक साधारण नहीं है बटु ब्राह्मण, ये विष्णु होंगे, विष्णु ही है, तेरे को छल करने के लिए आए। किंतु बलि महाराज कहते हैं चाहे कोई भी हो, यदि विष्णु है सब कुछ उनका है तो ले ही जाएंगे, किंतु मैं संकल्प कर लिया मैं उनको सब कुछ दूंगा। यहाँ तक कि उनके परिवार के लोग बलि महाराज जी के, कभी उनके बहन बेटी उनकी पत्नी, सब लोग देख करके मोहित हो गए, मुग्ध हो गए। कोई बोले यदि ये मेरा बेटा हो जाता कितना लाल लड़ाती और कितना प्यार करती, वो तो भगवान के रूपों में आकर्षण कितना है। किंतु जब भगवान लीला कथाओं का श्रवण करते हैं, जब हृदय में प्रवेश करते हैं भगवान के कथा रस, बस वो तुरंत उसमें शक्ति संचार करके नित्य काल के लिए उनको हृदय में बांध देते हैं और तस्य मस नहीं होते। इसी ये कथा का श्रवण करना ही सबसे श्रेष्ठ साधन है। तो दामोदर मास, कार्तिक व्रत, ऊर्जा व्रत, नियम सेवा जब आके उपस्थित होता है तो गुरुवर्ग क्या करते हैं, सबसे पहले ही भगवान के लीला कथाओं का श्रवण कीर्तन शुरू कर देते हैं। हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले दामोदर और दामोदर के परिकरों की साथ जो लीलाएँ हैं लीलाओं का कीर्तन करते हैं, फिर लीला शिखरणी उसका पान करते हैं और कराते हैं। और इसके द्वारा क्या होगा, उनके जो परिकर है उनके प्रति श्रद्धा उदित होगा और विश्वास उदित होगा और तुरंत उनके साथ संबंध उदित होने पर उनके कृपा शक्ति से भगवत सेवा के लिए उस समय उत्कंठा होगा और ऐसे उत्कंठा होगा अब नहीं रह जाता है। अब भगवान स्वयं क्या करते हैं, उस रस पान करने वाले को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं और जहाँ वो लोग कीर्तन करते हैं भगवान वहाँ पर विराजमान हो जाते हैं। जैसे कि देखा ब्रज में असुर लोग आए, दानव लोग प्रभु के बचपन में बालकपन में, तो कहते हैं ये कैसे आकर्षित हुए, ब्रज में तो प्रवेश नहीं कर सकता, जो माया के बड़ा कठिन चार दीवारी है वहाँ तो कोई नहीं प्रवेश कर सकता। एक बार कंस सोचे भूषदेव के लड़के को छिपा करके रख दिया है नंद के यहाँ, मेरा बलराम को और कृष्ण को मैं जाऊँगा और इनको मार डालूँगा और तभी मेरा शांति हो सकता है। तो वो क्या किया, चुपचाप सज करके अस्त्र लेकर के अकेले ही आकर के गोकुल में प्रवेश करने के लिए चेष्टा की। तो उसमें एक बुढ़िया थी, सफ़ेद बाल, लाल कपड़ा पहनी हुई, सुंदर शरीर बूढ़ी, वो पूछ रहे कहाँ जा रहा है, तो जवाब नहीं दे करके अंदर प्रवेश करने की कोशिश की। उन्होंने झट पकड़ लिया चोटी और कहते देख बिना मेरा आदेश के यहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता, यदि प्रवेश करना है तो मेरे से आज्ञा अनुज्ञा लेंगे तभी। तो बोले वो कंस हैकड़ कुछ अपने हैकड़ी दिखाने गए, एक पकड़ कर चोटी फेंक दिया नीचे एक कुंड में। जब वो स्नान कुंड में डूब गया, उठा तो क्या देखा, उसे शरीर भी बूढ़ी हो गई, एक बुढ़िया का शरीर धारण कर ली, दांत एक भी नहीं है और बाल पके हुए हैं और उसने नाकों में नकेल पहना करके हैं और उनको पेड़ के साथ बांध दी। कहते हैं ब्रजवासियों को जब तुम बाहर जाओ उनको देना एक लात और जब अंदर आओ देना थप्पड़ और खाने के लिए क्या देना, जो छिलका और बासी कुसी रोटी के टुकड़े इसके सामने पटक देना और सब समय इसको पीटना। क्यों, कौन सा कैसे प्रवेश करेगा, जो माया वहाँ पर विराजमान है, कोई भी असुर दानव ब्रज में नहीं प्रवेश कर सकता। तो ब्रजवासी तो उनको गुजुग माया का आदेश पालन करते हैं, जाते समय लात मारते हैं, घूसा मारते हैं, आते समय उनको थप्पड़ मारते हैं, और कहते कहते सालों हो गया और कंस राज दरबार में नहीं है, दुखी है। तो एक दिन पूर्णमासी कहती है, अब आएगा कभी ब्रज गोकुल में? तो नहीं आऊँगा। और कभी ब्रजवासी को सताएगा? तो नहीं। फिर नाक के नकेल खोल करके फेंक दिया हाँ सरोवर में, तो उड़ान भर के भाग गया। इस डर के मारे कभी नहीं ब्रज में आता था, मथुरा में रह करके उदम करता उत्पाद मचता था, किंतु ब्रज में कभी नहीं आया। तो कहते हैं बुद्धि भगवती की इच्छा के बिना कोई तो ब्रज में आ नहीं सकता, किंतु असुर दानवों को प्रभु ने क्यों अधिकार दिया? कहते हैं ये दानवों ने जीवन भर गलत काम करके बहुत कष्ट पाया और कष्ट पा रहे हैं। यदि भगवती को कहकर के प्रवेश दिया, भगवान के परिकर को दर्शन करा, भगवान को भी हैं स्पर्श किया और उनको लेके छोड़ से मार डालूंगी या उनको हाँ लेके भाग जाऊंगा, किंतु भगवान के स्पर्श मात्र ही, दर्शन मात्र ही और परिकरों के हैं दर्शन से उन लोगों का चित्तवृत्ति सुधर गया। क्योंकि वो लोग भगवान की लगातार को सुना, मथुरा में कंस बैठा हुआ है, कृष्ण क्या कर रहे हैं, रोज दिन उन लीलाओं को सुनते हैं और जितने राक्षस है, दानव है, सभी सुनते हैं। इस लीला कथा में इतना सामर्थ्य है उसका हाँ, जो कुप्रवृत्तियाँ या उनके जो कर्म बंधन, ये उनके अनर्थ सब चीज़ कब खत्म हो गया, खत्म होते जा रहा है उन्हें पता नहीं। कंस इसलिए 10 साल तक कृष्ण का आविर्भूत होने के बाद हाँ बचे रहे, दिन रात याद करते करते सुनते सुनते हाँ उनका तन्मय हो गया, आविष्ट हो गया। तो यह लीलाराज शिखरिणी यदि कहीं इसका कीर्तन होता है तो उनका नित्यकाल श्रवण कीर्तन करने की चेष्टा करना चाहिए। पहले श्रवण कीर्तन में आलस्य या उद्वेग हैं होगा? कहते नहीं, रित करना रसायना कथा, इस कथाओं का श्रवण मात्र ही श्रवण मंगलम श्रीमदा ततम हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कलमसापहन श्रवण मंगलम श्रीमदातम, श्रवण मात्र ही मंगल होगा। और जो तप्त जीवन है, कष्टकर दुखमय जीवन है, इससे सदा के लिए शांति प्रशांतमय हो जाएगा जीवन यात्रा। इसलिए इस लीला कथाओं का श्रवण कीर्तन करने का प्रयास मात्र करना ही अनुरागमय साधन के लिए और रागात्मिक ब्रजवासी का संबंध के लिए श्रेष्ठ उपाय है। तो ग्रंथकार इस कथाओं को कहते हुए कह रहे हैं, यदि कृष्ण स्मरण करना है और भगवान की सेवा करना है तो तत्कथा रथस्यासु कूट जायत ब्रज वासुदा, ब्रज में आ जाओ। ब्रज में आने से ब्रजवासी जन भगवान की कथाओं का नित्य निरंतर कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं। ब्रजवासी जनों के पास दूसरा कोई धंधा नहीं है, व्यापार नहीं, वो लोग कुछ जानते नहीं। वही ब्रजवासी हैं, ब्रज में रहते हैं, ब्रज के रज में जो नंदनंदन नवकिशोर नटवर नंदनंदन की महिमाओं का सदा कीर्तन करते हैं। इसे प्रभु ने गोवर्धन के साथ क्या लीलाएं की, राधा कुंड में क्या लीलाएं की और पूरे ब्रज में 84 कोस ब्रज में भगवान ने क्या क्या लीलाएं की, उसका श्रवण कीर्तन करना ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ उपाय है। कोई भी कीर्तन होता है तो वहाँ पहुँच जाना चाहिए। ललिता विशाखा आदि मंजरियाँ सखियाँ नित्य निरंतर यह कीर्तन करते हैं और उनके स्मरण करके प्रार्थना करने पर हो तो यह सुजोग अवश्य वहाँ भी मिलेगा। बलदेव प्रभु स्वयं ब्रज में हैं, बलदेव प्रभु को कोई बांध न सके, किंतु नंदनंदन को बांध लिया। जानते हैं नंदनंदन को बांध लिया मतलब उनके साथ बलदेव प्रभु भी है, राधा रानी भी साक्षात है, सच्चिदानंद विग्रह सत्स्वरूप संदिनी स्वरूप बलदेव प्रभु और संबित चित स्वरूप कृष्ण और श्रीमती राधा रानी। इसलिए इतना आसान नहीं है कृष्ण अकेले को बांध ली। इससे सुबह से शाम तक दो अंगुली कम पड़ता रहा रस्सी, कितना भी जोड़ ले दो अंगुली कम पड़ता रहा। जब हाँ, गुरु के शरणागत हो गए, भगवान के शरणागत हो गए और शक्ति के शरण ले ली, बस तुरंत भगवान बांध गए, बंध गए। इससे इस अनंत लीलाओं को सदा सर्वदा स्मरण कीर्तन करना, श्रवण करना चाहिए। इस उपाय से ही हम लोग अपना स्वरूप सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वयं भगवान इन भक्तों की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, यहाँ तक कि स्वयं कृष्ण कहते हैं यदि राधा कुंड के किनारे में पहुँच गया और राधा रानी के ब्रजदेवियों के अंचलों को पवन ने स्पर्श किया और आकर मेरे को स्पर्श किया, मैं आपको अपने आप को धन्य मानता हूँ, क्योंकि भगवत परिकर भगवत लीला कथाओं के श्रवण कीर्तन के द्वारा भगवत रस पान कर करके हृदय में भगवान को रख लिया। इससे भगवान को, भगवान के ये भक्त इतना प्रिय है, उनके बिना भगवान और कुछ न जानना चाहते हैं, न सुनना चाहते हैं, न किसी के साथ उनका कोई संबंध है। इसलिए कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, भजामि राधाम अरविंद नेत्राम, स्मरामि राधाम मधुर स्मितश्यम, बदामि राधाम करुणा भराद्राम, तथो मोहन नास्ति गतिर्न गतिर्न कापी। कहते मैं राधारानी की चरण कमलों की वंदना करता हूँ, राधारानी की चरण कमलों की स्मरण करता हूँ और राधारानी करुणा की सदा सर्वदा कीर्तन करता हूँ, और इसके अलावा मेरा कोई और उपाय नहीं, और कोई मार्ग नहीं, और कोई विचार नहीं है, हैं। तो उनके परिकर को छोड़कर और कोई अन्यत्र आश्रय ले लिया तो फिर वंचित हो गया। इसलिए राधा रानी के पदांकित भूमि वृंदावन, राधा रानी के नाम को आश्रय लेकर के जो चलेंगे, कृष्ण उनके पास सदा के लिए बिक जाते हैं और वशीभूत हो जाते हैं। तो ग्रंथकार जब देखा बहुत उपाय करके कुछ नहीं हो रहा है, जब राधा रानी की शरण ले ली तो उन्होंने देखा वाह सब कुछ मुझे मिल गया है। इसलिए ये दामोदर लीला में सब कुछ स्पष्टीकरण किया है। तो कल हम लोग आगे सुनेंगे। गौतमानंदी हरि हरि बोल।